अपने लोम कूप में लिए हुए असंख्य करोड़ों ये कृष्ण है, इसलिए उनकी उपासना होने से सबकी उपासना हो जाएगी। इसलिए बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण माम चरण भक्त्या विहीना पराध लक्ष्य क्षिप्तास्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरण। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत आरंभ करते हुए कुछ शंकाओं को, जो साधारण लोगों के की शंकाएं होती हैं परमार्थ में, उसको सामंजस्य करने की हमने कुछ चेष्टा की। उसमें भी कुछ रह गया था, उसका जो स्पष्टीकरण कर आगे श्रीमद् भागवत की कथा में हम लोग चलेंगे। कल हमने बतलाया था गीता में कृष्ण ने कहा, मैं धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अवतरित हुआ हूं, दुष्टों का संहार कर मैं धर्म की प्रतिष्ठा कर। तो ये बात साधारण इतिहासकारों को ठीक है, आप लोग सुनिए, कोई पहले 1000 आदमी 10000 आदमी होते थे, माइक की जरूरत नहीं होती थी। हमने देखा हमारे गुरुजी प्रवचन करते थे, 10000 15000 आदमी बैठे हैं, कोई जरूरत नहीं, माइक अब निकला है। और ये क्या होता है ना, ये पहले नहीं होता था, भगवान ने दिया है ये, इसका व्यवहार करते थे और लोग भक्तिमान होते थे। टेप रिकॉर्डिंग होने से बस सब गड़बड़ हो, कोई सुनता नहीं है मन से, जो टेप रिकॉर्ड में तो आई है। ऐसी है क्या, ऐसी है
नहीं
है,
तो गीता में कहा कृष्ण ने, किंतु देखा गया हमने कल शंका की थी, जो साधारण आज के लोग, भारत के भी आजकल इतिहासकार और दूसरे लोग भी ऐसी शंका करते हैं जिनको गुरु नहीं है। जिनका गुरु है उनका तो शंका नहीं है, वैसे परमार्थ वाले गुरु, और जो उनके गुरु सुलझे नहीं है या गुरु नहीं है, वो लोग यही विचार करते हैं। गीता में तो सब लोग मारे गए, केवल 8 आदमी बचे और सारे मारे गए, सब हमारी विद्याएं लुप्त हो गई, धनुर्वेद इत्यादि लुप्त हो गया और दूसरी दूसरी विद्याएं लुप्त हो गई, तब से हम लोग पराधीन हैं। तो धर्म की प्रतिष्ठा कहां हुई, नहीं हुई कैसे, देखिए उस समय में कर्ण दुशासन और दूसरे दूसरे लोग बड़े अत्याचारी थे, बड़े बड़े राजा लोग थे, अपने बाहुबल से दूसरों की बेटियों को बहुओं को पकड़ लेते, उनका ध्यान ले लेते, राज्य ले लेते, मानो उनका यही कार्य है। धीरे 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 संसार में धर्म समाप्त होने जा रहा था। सत्यवादी बहुत कम लोग थे, दान देना करीब करीब बंद हो गया। धर्म के दूसरे अंग हैं, हृदय में सहनशीलता हो, क्रोध न हो, दूसरों से प्रीति करे, ये सब आत्मा के धर्म समाप्त हो गए, पृथ्वी के लिए भार स्वरूप हो गया। इसलिए महाभारत जब युद्ध समाप्त हो गया, जितने जितने अहंकारी लोग थे, जरासंध से लेकर के कंस तक, पौंडिक वासुदेव और महाभारत में हजारों लाखों लोग, राजा लोग, जो ऐसे शरीर को मैं मान करके और इसी को ही अपना बाहुबल से समझते थे जे ये हम राजा हैं, उन सब का विनाश हुआ। अब स्त्रियां रही, लाखों विधवाएं रही उस समय में, तो वो कैसी थी? द्रौपदी कुंती को तो आप जानते हैं कि कैसे परम धार्मिक थी, गंधारी को जानते हैं कैसी थी। विवाह होने के बाद में धृतराष्ट्र से विवाह हुआ तो अपनी आंख पर पट्टी बांध दी और पति की सेवा के अनुकूल में जो कुछ हुआ करती थी। कृष्ण ने भी बतलाया गीता में, भागवत में, अनसुईया ने बतलाया है रामायण में और दूसरे दूसरे ने, पति यदि अंधा लंगड़ा लूला इत्यादि भी है तो भारतीय संस्कृति के अनुसार में उसकी सेवा होनी चाहिए, उसके अनुरूप चलना चाहिए। यद्यपि इसके भी कुछ अपवाद हैं, अपवाद हैं, फिर भी एक शाश्वत के रूप में हमारे भारतीय वैदिक रीति ऐसे चली आ रही है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, उपाख्यान है वेद शास्त्र उपनिषद में, जो स्त्रियां पति को परमेश्वर मानती है और अपने इस पतिव्रत धर्म से सूर्य का गुना भी बंद कर दिया, ऐसे भी उदाहरण है। तो गंधारी ने देखा जब हमारे पति नहीं देखते हैं तो हम भी पट्टी पे बांध लें और उनकी सेवा में लगी रहती। वो ऐसी पतिव्रता थी और भगवान की भक्त थी कि उसको कुछ वरदान देने का भी अधिकार हो गया था। इसलिए दुर्योधन एक दिन गया, बोले मैया तू जो चाहती है वही हो जाता है, तो तू हमको वर दे दे कि पांडवों से मैं कभी नहीं मरूं और मैं उन्हें मार डालूं और सारा राज्य मेरा हो जाए। तो उसने कहा जी बेटा ऐसा मैं नहीं कर सकती, कृष्ण ने जो परामर्श दिया है उसको मानो तुम लोग, इसी में तेरी भलाई है। पांडव लोग हमारे भी पुत्र हैं और तुम लोग भी हमारे पुत्र हो, इसलिए हमारी बात मान करके पांडवों का आधा राज्य दे दो यदि सुख चाहते हो, नहीं तो मैं ऐसा वर नहीं दे सकती जो तुम हमारे पुत्र हो और पांडव लोग हमारे पुत्र नहीं हैं और उनको ऐसा कर दूं जो तुम उसको मार डालो और उसका सब राज्य ले लो, ऐसा मैं नहीं कर सकती। बार बार रोने गिड़गिड़ाने लगा। उन्हें कहा जैसे एक बात करो, अभी तुम नंगे होकर के हमारे सामने आ जाओ, पूरा बिल्कुल कपड़ा खोल करके नंगे आ जाओ। तो वो आया किंतु पुरुष का जो चिन्ह है उसको अपने हाथों से ही छिपा करके मैया के सामने आया। उसको याद नहीं कि जिस समय पैदा हुआ मैया के सामने ये सब नहीं छिपाया, तो कुछ लज्जा से, अब बड़ा हो गया है, अब तो 30-35 वर्ष का हो गया है, इसलिए लज्जा ही थोड़ा सा छिपा दिया। मैया ने आपकी आंख की पट्टी खोली और उसके तरफ ऊपर से नीचे तक देखी, जहां जहां हमारी नजर पड़ी है वह सब तुम्हारा वज्र हो जाएगा, वहां पर कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा, किंतु तुमने ये क्या कर लिया, ये यहां पर क्यों छिपा लिया? अब ये तुम्हारा कमजोर रह गया, शत्रु पक्ष यहीं पर वार करने से अब तुम्हारा जाएगा, नहीं तो तुम्हारा नहीं जाता। अफसोस करने लगा, कहिए ये तो कह दो जैसे पांडवों को मैं परास्त कर दूं, उनको जीत लूं, ये मैं नहीं कहूंगी, ये मैं नहीं कर सकती, अधर्म नहीं, ऐसी पतिव्रता थी। आप लोग जानते हैं रावण की स्त्री मंदोदरी कैसी थी, भगवान की परम भक्त थी। मेघनाथ दुष्ट था किंतु उसकी स्त्री सुलोचना कैसी थी, बड़ी पतिव्रता थी। लक्ष्मण और मेघनाथ में जो युद्ध हुआ वो लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध नहीं था, उनकी पत्नियों में युद्ध था, पत्नियों का युद्ध था, पति पति धर्म का। लक्ष्मण की पत्नी वो भी बड़ी पतिव्रता थी, और इधर में सुलोचना ये भी बड़ी पतिव्रता थी और भगवान की भक्त थी। वो दोनों का पतिव्रत धर्म बराबर होने से कोई हारता जीतता नहीं, किंतु मेघनाथ अपने दुष्कर्म से मारा गया, नहीं तो नहीं मारा जाता। इसलिए हम देखते हैं कि महाभारत में जो स्त्रियां थीं, जो बच गई थीं, वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक धार्मिक सहिष्णुता उनमें थी, धर्म उनमें था। आप लोग देखे होंगे पति लोग दिन भर काम करते हैं और पत्नियां उनकी ठाकुर जी की पूजा में व्यस्त रहती हैं, जैसे भला बुरा जैसा समझती हैं करती हैं, भले ही देवता की करे दुर्गा की करे किसी करती जरूर है कुछ ना कुछ। इसलिए जब मारे गए सब असुर जैसे लोग तब उनकी स्त्रियां बची, और बहुत से लोग जिनको युद्ध में रुचि पहले से ही नहीं थी, सभी पुरुष लोग तो मारे नहीं गए पृथ्वी के, वो लोग बचे थे, वो लोग शांत प्रिय थे, स्त्रियां भी शांति चाहती थी। अब उनको सुनने का गीता समझने का मौका आया, अब तक इतने अपने बाहुबल के दर्प में इतने थे अहंकारी, किसी की सुनने वाले नहीं थे वो असुर श्रेणी के लोग, जरासंध नहीं सुनता, कंस नहीं सुनता, अपने बाप को कैद करके रख दिया, राज्य ले लिया था, ऐसे सब दुष्ट लोग थे। अब उनका संहार होने से लोगों में ये प्रवृत्ति आई कि हाँ कृष्ण ने गीता में क्या कहा, अब उसको सुना, क्या सुना, कृष्ण ने कहा यदि तुम शांति चाहते हो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यदि सुख और शांति चाहते हो तो जो महात्मा लोग चाहे गृहस्थ में हो या त्यागी हो इस पर निर्भर नहीं है। महाराज जनक तो गृहस्थ ही थे, और भी बड़े बड़े गृहस्थ हो गए हैं हमारे यहाँ, जो कि बड़े बड़े ऋषियों से भी बहुत उन्नत हैं। स्त्रियों में भी वैसी बड़ी हो गई हैं जो पुरुषों से बहुत उन्नत हो गई हैं। नारद जी जैसे लोग गोपियों की चरण की धूलि वंदना करते हैं, उद्धव जैसे लोग। इसलिए तद्विधि प्रणिपाते न, यदि तुम सुख और शांति चाहते हो तो उनके पास जाओ जो तत्वदर्शी हैं, तत्व को जानने वाले हैं। संसार में ये प्रॉब्लम क्यों आती है, बुढ़ापा क्यों आता है, जन्म मृत्यु का कष्ट क्यों आता है, क्यों एक आदमी जन्म से ही अंधा लंगड़ा लूला और बुद्धि नहीं है, और एक जन्म से ही बड़े रेशों के घर में जन्म ले लिया, क्यों, कुछ है कारण। इसलिए बतला रहे हैं यदि इन चीजों का तुम सॉल्व करना चाहते हैं, इन प्रश्नों का, और सुखी होना चाहते हो शांति, तो क्या करो, महापुरुष के पास नहीं जाओ जो जानने वाले हैं, उनके पास में जाकर के पहले तो आत्मसमर्पण को, आप जो कहेंगे मानूंगा, करिष्ये वचनं तव। और दूसरी बात, प्रतिपूर्वक परिप्रश्न करो, जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए नहीं, प्रश्न करो इसलिए नहीं कि महाराज जी आप जानते हैं कि नहीं, मैं जरा देख लूं, इसलिए नहीं, कुछ समझने के लिए। महत्पुरुषों के पास जाओ, और सेवाया उनकी कैसे प्रीति होती है ऐसी उनकी सेवा कुछ करो, तीन चीजें वो तुमको ये सब तत्व तो बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे, यज्ञार्थात कर्मणो लोकमनत्र कर्म बंधरा तदर्थम कौंतेय मुक्त संघ समाज। ये लोग बतलाएंगे जी देखो प्रारंभ ऐसा करो, यज्ञार्थात कर्मणो, तुम्हारे जो कुछ भी कर्म होते हैं, जो कुछ कर्म करते हो, वो भगवान की प्रीति के लिए करो, उनको अर्पण करके करो, या उनके प्रीति के लिए करो, अपने लिए न करो, नहीं तो कर्म बंधन हो जाएगा। ये समझते हो ये मैं कर रहा हूं, ये तुम्हारा कर्म बंधन ऐसा जकड़ देगा जो जन्म जन्म में मृत्यु और इसमें आना पड़ेगा। और उस तरह से मैं कर्म बंधन अनाशक्त होकर के अपना कर्तव्य के लिए करो, जो भगवान ने ऐसा कहा है करने के लिए, अनाशक्त होकर के बेटे का पालन पोषण करो, पति की सेवा करो, और जो दूसरे काम है वो करो, तो ये कर्म बंधन नहीं होगा। कृष्ण की प्रीति के लिए किया है, इसके लिए क्या करना होगा, उस गुरु के निकट में, संतों के निकट में ये समझना होगा कि मैं शरीर नहीं हूं। पहली बात, वंशास जीर्णानी जथा विहाय नमान गृहणाति नरो पराणी। पहले समझो, जिसके लिए तुम झूठा बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, लोगों से लड़ाई कर रहे हो, यह शरीर मैं नहीं हूं, तुम लाख चेष्टा करने पर भी तुम अंत तक लाखों डॉक्टरों से, इंजीनियरों से सब कुछ ले करके भी, करोड़ों रुपए खर्च करके भी तुम बुढ़ापा नहीं रोक सकते और मरना जरूर पड़ेगा, इस चीज को गारंटी रखो। तो किस लिए झूठ बोलना, किसके लिए ये सब कमाई करना, जो कुछ तुम कर रहे हो, इस चीज को समझो, इस शरीर के द्वारा मरने के समय सबको छोड़ करके जाना होगा, एक तिनका नहीं दी जाएगा, एक केस नहीं जाएगा। फिर ये बुराई किस लिए कर रहा है, इसने मत करो। गीता में कृष्ण ने और भी कहा, तीन प्रतिज्ञा करके कहा उन्होंने, माम एव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते, माम एव, एव मैंने ही, मुझे ही, ये संसार का परिपालन करने वाला सृष्टा है, सृजन करने वाला है, संहार करने वाला है, सब ईश्वरों का मैं ईश्वर हूं, इसलिए माम एव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते, जो हमारी शरणागति लेंगे, हमारे शरण में आएंगे, मैं कुछ नहीं, आपके चरणों के शरण में आया हूं, वे लोग सुख और शांति पा सकते हैं, इस चीज को समझो, वो सबका मालिक है। और ते अपि मामेव कांतेय, मामेव, मुझे ही, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो भी हमारी ही पूजा करते हैं, क्योंकि फल देने वाला मौन, किंतु ये विधि नहीं है, विधि हमारी पूजा करो, उनको प्रसाद दो, इसी से वो संतुष्ट रहेंगे। और तीसरा, सर्वधर्मान माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम, मुझे ही, दूसरे के लिए नहीं कहा, तीन जगह माम एव, माम एव, माम एव आया, माम माने क्या, कृष्ण, मैं कृष्ण, हमारा ही भजन करो, हमारा ही शरणागत हो, हमारे अंदर में ही अपने मन को लाओ, ये उपदेश दिए। इसे क्या होगा, अर्जुन ने, अर्जुन को कृष्ण ने कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद परां शांतिम स्थानम प्राप्तसि शाश्वत। शांति कैसे मिलेगी, रुपए पैसे से, पद से, ओहदा से नहीं मिलेगी, किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होना कांटों का ताज लेना है, वो नहीं सुखी रहते, फिर भी हम चाहते हैं, हमारे भारतवर्ष में टाटा बिरला इत्यादि बड़े बड़े धनी हैं, किंतु चोरी करते हैं और पकड़े जाते हैं तो जेल भी जाते हैं, क्यों, क्यों है, इसलिए कहते हैं तमेव शरणम गच्छ, तुम प्रभु हमारे शरणागत हो और मेरी कृपा से तुमको पराशांति और स्थान गति तुमको लाभ होगा, दूसरे चीज से नहीं, हम लोग इसी लिए दुखी हैं, भगवान पर निर्भर नहीं कर पाते। अभी हमारे बेटी ने एक कीर्तन किया, वो पट में लिपट गए बनवारी, हाथ उठा करके पुकारा, मैं अब संसार के सब पर भरोसा मैंने छोड़ दिया। हमने पतियों के तरफ में देखा, भीष्म पितामह इत्यादि बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, महाराज धृतराष्ट्र बैठे, किसी ने हमारी इससे हमारी रक्षा नहीं की दुशासन और दुर्योधन के हाथों। इसलिए हे प्रभो, मैं तुम्हारी शरण में आई, किंतु अभी अंचल अपना दांतों से दबा करके कह रही थी, इसलिए भगवान को द्वारका से आने में देरी हो रही थी। रुक्मिणी जी पूछ रही है, तुम आज छटपट क्यों कर रहे हो, तुम्हारे भक्त पर भीड़ पड़ी है, तो जाओ। वो अभी अपने बल का भी भरोसा है, सब तो छोड़ दिया है, केवल अभी छोटा सा बात ये बाकी है। वो सोच रहे कि इससे दबा करके मैं बच जाऊं। जब उसने हाथ छोड़ दिया और कपड़े भी इसमें से छोड़ दिए, संपूर्ण रूप से हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारी, जब हाथ उठा करके कहा, आंख बंद करके सब आशा भरोसा छोड़ करके जब उनको पुकारा, तो एक सेकंड नहीं लगी, अपनी जूती भी भूल गए, गरुड़ भी भूल गए, और छट एकदम कपड़े बंद करके और उसकी लाज रखी। यह शरणागति है, हम लोग अभी नहीं कर पा रहे। महात्मा लोग ऐसा करते हैं, सुखी हो जाते हैं। हम लोग कुछ कुछ हैं, इसलिए कुछ कुछ सुखी है। जिस समय पूर्ण रूप से उनको जान करके उनके शरणागत हो जाएंगे, बस संसार से आवागमन इत्यादि सब बंद हो जाएगा। नारद इत्यादि ऐसे महात्मा हैं, इसलिए हम लोग अभी सचमुच में उनके शरणागत में। पूजा तो कर लेते हैं, पूजा करते हैं, हमारे पति को, हमको पुत्र नहीं है, हे प्रभु हमको पुत्र दे दीजिए, ये पूजा। तो ये किसकी पूजा हुई, भगवान की पूजा हुई, नहीं तुम्हारी अपनी पूजा हुई। हम देखे हैं इंडिया में शंकर जी के मंदिरों में जाकर के महिलाएं और पुरुष लोग जो ठाकुर जी का, शिव जी का मंदिर का जो दरवाजा का चौखटा होता है उसको ऐसे दबाते, हे प्रभु हम आपको एक रुपये का बताशा चढ़ाएंगे, हमारा बेटी और बेटा ये पास हो जाए, हमारी दुकान नहीं चल रही है, दुकान चलने जाएगी प्रभु। तो ये कार शरणागति और भजन पूजन है, ये इसको पूजन भजन अभी ये नहीं कर, ये तो अपने कर्मों की वजह से ऐसा है। भगवान के लिए पुकारो तो सचमुच में उनको पुकारो। इसलिए ऐसी गंधारी और दूसरे जैसे महिलाएं थी लाखों, सत्पुरुष थे, इसलिए गीता में ये उपदेश दिया, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन सर्वभावेन, सब प्रकार से उनके शरणागत हो, तो फिर देखो उनकी कृपा से पराशांतिम, ये जगत की शांति नहीं, आज शांति हो गई, एक समुद्र की लहर आई या फिर दूसरे दिन क्या हो, उसी समय में दूसरी लहर, एक दुख गया, क्लेश गया, फिर दूसरा आया, संसार में ऐसा ही लगा हुआ है, परम शांति होगी। अनन्य चिंतन तो मांगे जना पर जुपासते तेषाम हम नित्य युग अभिजुक्ता नाम जोग क्षेम भाम्य। जो अनन्य रूप से भगवान का शरण ले लेता है, भगवान को चिंता हो जाती है, जैसे बेटा जन्मा कुछ कर नहीं सकता, वो रोएगा, मैया आकर के मक्खी को भगाएगी और अपना स्तन देकर के उसको दूध पिलाएगी, बेटा कुछ करेगा कुछ, इसलिए मैया को 24 घंटा जहां भी रहे उसको बेटे की चिंता है, बेटी की चिंता है, ऐसे भगवान को चिंता हो जाती है, तो वो ढो करके उसका जोग और क्षेम लेकर के उसके पास में लाते हैं, ऐसे भक्तों का ऐसे बहुत से उदाहरण है। और क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मांग नमस्कुरु मामेव यस्य सत्यम ते प्रतिजानो प्रति। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, मैं प्रतिज्ञा करके तुमसे कह रहा हूं, तुम हमारे प्रिय हो, तुम अपने मन को हमारे अंदर में लगाओ, हमारी भक्ति करो, हमारी पूजा करो, कुछ नहीं कर सकते इस युद्ध में तो अंततः हमें नमस्कार करके करो। नमस्कार माने क्या, नमस्कार महाराज जी, नमस्कार जी, ये नहीं, नमस्कार किसको कहते हैं, न निषेध म अहंकार, मैं शरीर हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत वीर हूं, ये सब को छोड़ करके अहंकार संसार के, और तब उनकी बात को सुनने को तब ये कहा जाएगा नमस्कार। यदि उसका अहंकार दूर नहीं हुआ, मैं नमस्कार, इसका कोई मतलब नहीं, यह तो एक संसारिक व्यवहार हो गया, इसे उसका साथ पते नहीं। इसलिए कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं तुम प्रतिज्ञा करो। अर्जुन को कहते हैं हमारे भक्तों का विनाश नहीं है। अजय आप ही क्यों नहीं प्रतिज्ञा करके कहते हैं जी हमारे भक्तों का विनाश। मेरी प्रतिज्ञा कभी कभी टूट जाती है, भीष्म ने तोड़ दिया और भक्तों ने तोड़ दिया, और तुम प्रतिज्ञा करेगा तो हमको जरूर रक्षा करना पड़ेगा। इसलिए मन मना भाव तुम हमारे बनो। कैसे कैसे बनो उदाहरण दे करके बतलाऊं। कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, हजारों बछड़े फुदकते हुए जा रहे हैं और कृष्ण बंसी लेकर के उनके पीछे पीछे बलदेव और सखाओं के साथ में जा रहे हैं। एक नवेली विवाहित होकर के नंदगांव में आई थी, वो कृष्ण को दर्शन करने के लिए अपने बाहर में आना चाहती थी घर के अंदर। सास ने कहा जी खबर मत जाना नहीं तो तुमको सांप काट देगा काला, बचेगी नहीं। अरे तुम्हारी बेटी को नहीं काटता और तुमको नहीं काटता, तुम क्यों जा रही? मैं तो जाऊंगी। उसकी बेटियां भी और सब लोग चारों तरफ में अपने खिड़की पर बैठे हुए, कोई ऊपर में बैठे हुए, कोई दरवाजा के सामने से कृष्ण का गोचारण देख रहे हैं। कृष्ण एक बछड़े को थोड़ा सा पूंछ में छू दिया और वो भागा हुआ ठीक जहां वो खड़ी थी दरवाजे पर वहीं आया। कृष्ण उसके पास जाकर के थोड़ी सी अपने हाथों से बंसी से उसके चिबुक पर हाथ थोड़ा सा रखा, उसके तरफ देखा, दोनों की नजरें एक हुई। कृष्ण के सौंदर्य ने, माधुर्य ने और इस लीला विनोद ने उसका हृदय ही चुरा लिया और कृष्ण फिर चले गए गोचारण। बेचारी खड़ी की खड़ी रह गई, भूल गई सब कुछ, धूलें चल हो गई। बछड़े और गायों के साथ में कृष्ण भी वन के अंदर में चले गए और वो जैसी की तैसी थी वही खड़ी रही। बस मन तो है नहीं, उसकी सासी इसने कहा था ना ये तुमको काला सांप दस देगा, तुम मानी नहीं हमारी बात, हुआ ना, चलो चलो। जब जोहरा ले गई घर में, देखा जी इसकी चेतना कैसे कराएं, तो उसने एक खड़िया में कहा जिसे जाओ घर से दही लाओ और मथनी हाथ में दे दी, मथो इसको, ऐसा करने से शायद उसका सेंस आ जाएगा। तो दही मथने लगी, तो वो ले आई घर से, उसको ये पता नहीं है ये हाड़ी किस चीज की है, ये हड़िया में रखा था सरसों, दही तो थी नहीं, दही वाली दूसरी हड़िया, इसी को लेकर के और मथने लगे। देखो तो अभी भी भूत नहीं उतरा। फिर जाओ पानी ले आओ तो चलने फिरने से शायद हो जाए। एक अपने बच्चे की को उसके गोदी में दे दिया और दूसरी में एक गागर उसके ऊपर में एक और गागर रख दी, सिर पर एक राग रख दिया, उसके ऊपर में गागर, उसके ऊपर गागर, और इधर में हाथ में डोल और रस्सी ये रख दी। जाओ अभी भी उतरे कुछ तो लेकर के चली, बच्चे को भी ले लिया और उनको तो अभ्यास है, आप लोगों को भी बहुत से लोगों का अभ्यास है ऐसा, सिर पर यदि रख लिया घड़ा दो चार, हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं, बैलेंस एकदम सीधा है। यहां पर भी है बैलेंस के साथ में चल, रस्सियों पर भी नर्तकियां नाचती हैं बैलेंस से। तो वो चली कुएं पर गई, उस सबको रखा, बच्चे को भी रख दिया और होश तो है नहीं, उसने रस्सी में फंदा लगाया और वो फंदा डोल में ना लगा करके वो किस में लगाया, बच्चे के गले में लगा दी। और सब स्त्रियां अरे देखो 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 क्या कर रही, अरे क्या कर रही। तो एक ने कहा अरे भाई भूत नहीं, ये नंद का पूत लगा है, भूत रहता तो उतर जाता, ये नंद का पूत कभी उतरता नहीं है। बड़ी मुश्किल से फिर उसको पकड़ करके घर में ले गया। ये मनमना भाव है, मनमना भाव माने कैसा, ऐसा अपना मन ऐसा रंग जाए कृष्ण में, समाधि जैसी, मैं कहां हूं क्या हूं ये सब, आत्मा सक्रिय रूप में उस समय कृष्ण की सेवा करते हैं, इसको कहते हैं समाधि। समाधि माने आदमी मर जाना जैसा निष्क्रिय नहीं, यह है समाधि का विषय। मन मना भव मत भक्तो, इसी तरह से सबके उदाहरण बहुत लंबे चौड़े हैं, हम विषय से उधर में चले जाएंगे, हमारा मूल विषय रह जाएगा। तो इसलिए मन को हमारे अंदर में दो, चिंतन करो, क्रियाओं के द्वारा, शरीर के द्वारा क्या करो, हमारी सेवा करो। यदि इतना भी नहीं कर सकते, अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में ये सब होता, हमारा अर्चन करो। अरे युद्ध में अर्चन करें ना युद्ध करें? अच्छा कुछ नहीं कर सकता है तो एक बार नमस्कार करो। एक बार नमस्कार करने वाला व्यक्ति भी कभी कर्म के चक्कर में नहीं पड़ता। ये सब गीता के अंत में कहा, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरण। अभी तक जब असुर थे ये सब कहने का सुयोग नहीं था, अब जरा शांति आई ना तो लोग सोच रहे हैं जे कैसे सुख होगा, उस समय में असुर लोग तो आए नहीं, अब वैसी स्त्रियां और वैसे जो सब पुरुष हैं उनको सोने का मौका मिला, चित्त और शांत हो गया। तब फिर क्या हुआ, अभी गीता की जो कथा थी वो लोअर क्लास की प्रारंभिक पाठशाला की शिक्षा है, कखा है ना ऐसे। और भागवत की कथा जिसके बाद में आरंभ होती है वो क्या है, वो बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट की पीएचडी और डीलीट की बात है। गीता से परमार्थ आरंभ, और जहां पर समाप्त गीता होती है उसके बाद से भागवत की कथा आती है। समझने का भी इतने तो नहीं समझेगा, इस चीज को समझिए। गीता के लिए कहा गया सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन सुधीर भोक्ता गीतामृतम महत। उपनिषद हैं, उपनिषद का वेद का जो सार भाग है वो उपनिषद कहलाता है। वो 108 है या 1008 उसकी शाखा है, उसका सार क्या है, गीता है। इसलिए गीता भी उपनिषद है, इसलिए गीता उपनिषद कहा जाता है। इसमें आत्मा और अनात्मा में क्या अंतर है, जड़ शरीर में और आत्मा में क्या अंतर है, ये सब चीजों को बतलाया गया और भगवान की शरणागति करी। और भागवत क्या है, निगम कल्प सर्व उपनिषदो गावो दोगधा, दोहन करने वाले कौन है, कृष्ण है, पार्थो वत्स, और जो अर्जुन है क्या है, बछड़ा है। और दूध किस लिए, केवल बछड़े के लिए नहीं, बछड़े से पहनाने के लिए, गाय को से दूध स्थान में उतर जाए और इसके बाद में थोड़ा सा पी लेता है, इसके बाद में बछड़े को हटा करके उसको दूह लेते हैं, उसको दूसरे लोग देते हैं। संसार के जो दुखी लोग हैं ये लोग बछड़े के समान हैं, इन लोगों के लिए ये दूध दुहा कृष्ण ने। किंतु भागवत क्या है, निगम कल्पतरुर्गलित फलम सुख मुखादम वृद्र संजितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस। ये समस्त वेद ऊपर से नीचे तक चारों वेद उपनिषद सब जितने 18 54 प्रकार के पुराण हैं, पुराण उपपुराण शाखा पुराण, महाभारत और रामायण, और इसके अतिरिक्त भी हमारे जो मनुस्मृति इत्यादि जो शास्त्र हैं सब का मंथन करके यह है भागवत। इसलिए निगम कल्पतरुर्गलितंग फलम सुखम खादम प्रिस, इसलिए भागवत की महिमा कुछ और है। गीता सुनने के बाद में लोगों को हुआ जैसे भागवत सुने तो परीक्षित महाराज जी की सभा में कौन आया, सुखदेव। पहले गीता हुआ, कृष्ण ने खुद कहा और अपने परिकर को भेजा, सुखदेव गोस्वामी को भेजा परीक्षित महाराज जी को, अब भागवत सुनने का समय आया तो भागवत उन्होंने सुना। भागवत में क्या है, हम जितने जीव हैं अभी यहां के नहीं है, हमारा स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास और दासी। यह जगत उस जगत का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, वहां जो चीज है उसी की परछाई इस जगत में है। उस जगत में कृष्ण एकमात्र कांत हैं और सब उनकी प्रेयसियां हैं, प्रियतमा हैं। इस जगत में इसका थोड़ा सा कुछ बदल गया, दाहिनी चीज बाएं, बाएं चीज दाहिने, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर, परछाई में दिखती है ना? आप दर्पण देखिए, आपका यह आंख इधर ही दिखेगी, ये आंख इधर देखेगी, उल्टा हो जाएगा। परछाई में भी ऐसा होता है उल्टा, तो ये परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लोब वृंदावन ये जगत है। इसलिए यहाँ पर जो चीजें हैं वहां हैं, तभी उसकी छाया इस जगत में, जो कुछ भाव देख रहे हैं, परस्पर प्रीति देखते हैं, ये सब उस जगत की छाया है। उसको अवलंबन करके उस जगत में जाना है। इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुख नहीं चाहता? है कोई? चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक कितने भी प्राणी हैं, अच्छी तरह से समझो, कोई भी संसार में नहीं है। आप लोग किस लिए आए? और लोग नहीं आए? आप लोगों ने देखा यहां जाने से सुख होगा, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे और जीवन में सुखी होंगे। एक चींटी सवेरे से दीवाल पर चढ़ रही है, रात में भी चढ़ करके क्या खोजती है? कहीं से गुड़ मिल जाए, कहीं से चीनी मिल जाए, कहीं से कोई चीज मिल जाए खाने के लिए। इसलिए सभी लोग सुख के लिए खोज कर रहे हैं, किंतु सुख मिल रहा है कि नहीं? पद्धति नहीं है, प्रोसेस नहीं है वो सुख की, इसलिए हमें सुख नहीं मिल रहा। गीता वो प्रोसेस बतलाती है कि कैसे भगवान को पाया जा सकता है। भगवान दिखते नहीं है किंतु निराकार नहीं है, कल भी हमने बतलाया था। कृष्ण उनका जो स्वरूप है, यही उनका नित्य स्वरूप है, ये बदलेगा नहीं। जब ही आएंगे इसी रूप में आएंगे कृष्ण। उनमें बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत से गुण हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं, वो बड़े कृपालु हैं। ऐसे नहीं भगवान है, उनको कोई माने न माने सबका पालन पोषण वो करने वाले हैं। तो भी उनसे हमारा एक कोई संबंध है। कृष्ण निर्विशेष वादियों के लिए निराकार हैं, हो सकते हैं, और दूसरे लोगों के लिए, ईसाई जो हैं हमारे भाई, उनके लिए वो लोग कहते हैं कि गॉड ग्रिप मी ब्रेड एंड बटर, खाने के लिए दो, और पिता के रूप में ही उनका भजन करते हैं। हमारे दोष को क्षमा कर, हमारे पाप को क्षमा कर देना, और फिर पाप करने का जब फिर हमारा क्षमा कर देना, इसके लिए करोड़ों पाउंड और डॉलर और क्या क्या खर्च करते हैं। इसमें भक्ति तक्ति कुछ नहीं, हमारे यहां ऐसा नहीं, हमारी संस्कृति में संपूर्ण से भगवान का समर्पण है। हमारा जीवात्मा इसके अंदर में जो है, इसका एक स्वरूप है, जैसे कृष्ण का स्वरूप है, बड़ा ही सुंदर। वो भावों के ऊपर में निर्भर करता है, कैसे हमारी आत्मा में एक इतना खूबसूरत रूप है। किसी न किसी प्रकार से भगवान से उसे संबंध है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ही में ऐसा है। जैसे एक चीज को समझो, 8 बज गया, बहुत जल्दी बज गया, तो हमने सोचा जी और सब कथा कहेंगे, कितनी कथा, अभी हमारा वो पहला ही नहीं आरंभ हुआ, शेष हुआ हा? तो फिर इसके बाद में फिर कहेंगे, वक्तव्य को स्पष्ट कर दे थोड़ा सा, क्या कह रहा था? स्वरूप है, अच्छा, जैसे गुठली है आम की, इमली का बीज है, आम का बीज है, नीम का बीज है, सबको गंगा के किनारे एक ही मिट्टी में सबको दे दो, और एक ही पानी दो गंगा का, और एक ही हवा लग रही है, और माली भी एक ही है, तो सभी में एक ही जैसा बीज से पेड़ होगा कि अलग अलग? अलग अलग होगा ना। उस बीज में जो पोटेंसी जिस चीज की है, आम से आम होगा, नीम से नीम का पेड़ होगा, गेहूं से गेहूं होगा, चावल से चावल होगा, जिस चीज का पोटेंशियल, उसी तरह से हमारे जो जीवात्मा इसके अंदर में है, कुछ कुछ सेवा की पोटेंशी जीव के हृदय में है। हम लोगों से जो प्रेम करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो उसी के वजह से वो सब कुछ कुछ है पोटेंशी। इसलिए भजन साधन करने पर वह जो भाव है वो प्रकट होता है, और उसी के अनुसार में गोलोक वृंदावन में, बैकुंठ में, राम की सेवा में हम नियुक्त होते हैं। जो है वही होगा, किंतु है कुछ। हम ये स्त्री पुरुष का जो रूप, गधे घोड़े का रूप, ये हमारा रूप नहीं है। एक चींटी के अंदर में भी आत्मा है और उसमें भी स्वरूप में कुछ भगवान के साथ में संबंध है। इसीलिए यशोदा जी के वो कृष्ण पुत्र हैं, सखाओं के मित्र हैं, गोपियों के प्राण प्रियतम हैं, द्वारकावासी महिषियों के लिए वो पति हैं, हनुमान के लिए राम है प्रभु। इस तरह से विभिन्न संबंध हैं। इन सब में जितने संबंध हैं उन संबंधों में सबसे अधिक जो गहरा और उन्नत सबसे है जिसमें प्रेम अधिक होता है। मैया यशोदा में कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति, है ना? उस प्रेम के द्वारा कृष्ण को बांध लेती है, किंतु संपूर्ण रूप से सेवा नहीं कर सकती। जैसे गोपियां, इधर सुनो, ओए बैठो बैठो बैठो, गड़बड़ मत करो, बैठो, अभी सुनो, दे एक मिनट सुनो, हमारी लड्डू देंगे, लड्डू लड्डू है ना हमारे पास। जैसे गोपियां अपने तन से, मन से, वचन से, इंद्रियों से सखा की भांति, पुत्र की भांति, प्रियतम की भांति संपूर्ण रूप से अपने पति की सेवा कर सकती हैं कृष्ण की, यशोदा मैया कृष्ण की कर सकती हैं कि नहीं? नहीं समझा, फिर से समझो। गोपियां कृष्ण के साथ में रास इत्यादि कर रही हैं, कृष्ण से ठट्ठा मसाखरी कर रही हैं, कहती हैं कभी कभी अपने पैरों की छाप कृष्ण के यहां पर दे देती हैं अलता, ने? और उनके साथ में राश इत्यादि करते हैं। यशोदा जी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? क्या उसमें क्या हर्ज है यदि करें तो? मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए सबसे प्रेम किसमें अधिक है? वो कृष्ण को पुत्र के समान भी प्यार कर सकती हैं, पति के तरह भी, सखा के तरह भी, दासी की भांति भी, और प्रियतम के रूप में जो सर्वोच्च सेवा है वो गोपियां ही कर सकती है, दूसरा नहीं। इसलिए कृष्ण उस प्रेम के ऋणी हो गए हैं, न पारे हम निर्वत्य संयोग। इस चीज को समझो, भागवत में इस प्रेम की महत्ता दिखलाई गई है। ये प्रेम सर्वोच्च है, इसी को देने के लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए। इस चीज को किसी ने नहीं दिया, ये भागवत ने दिया। इसलिए महाभारत युद्ध के बाद में ये सुनने का अवकाश आया परीक्षित महाराज जी को, नारद जी को, भक्ति देवी को और गोकर्ण धुंधुकारी को, ये सब मिला। आज उसी का फल है जो हम सुन रहे हैं। आज यदि उसी समय में वो सब रहते, वो दुर्योधन और रावण जैसे लोग, उत्पाती लोग हजारों, सुनने देते? नहीं सुनने देते। इसलिए ये पहले तो ये बात है कि महाभारत का युद्ध हुआ धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हुआ, इसलिए असुरों को विनाश करके धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। और भी आज एक बात करना चाहता था किंतु अभी तो 8 अभी बज गया, इसलिए आज मैं यहीं पर प्रवचन समाप्त करता हूं। कल 8:30 तक और है तो ठीक है, तो एक कीर्तन करा दो। तो जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। रामचंद्र जी ने सीता को क्यों छोड़ा है? अवज्ञा करके नहीं। अब शंकर जी के लिए भी सुनिए, उन्होंने सती जी को त्याग कर दिया एक साधारण सी बात के लिए, साधारण लोग सोचते हैं, इसलिए स्त्रियों के प्रति यह अन्याय हुआ। इसका उत्तर यह है कि किसी समय में शंकर जी अपनी पत्नी सती जी को लेकर दंडकारण्य में आए। उस समय में रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था और लंका ले लिया था। रामचंद्र जी ने सीता को क्यों छोड़ा है? अवज्ञा करके नहीं। अब शंकर जी के लिए भी सुनिए, उन्होंने सती जी को त्याग कर दिया एक साधारण सी बात के लिए साधारण लोग सोचते हैं, इसलिए स्त्रियों के प्रति यह अन्याय हुआ। इसका उत्तर यह है कि किसी समय में शंकर जी अपनी पत्नी सती जी को लेकर दंडकारण्य में आए। उस समय में रावण ने सीता जी को, सीता जी का अपहरण कर लिया था और लंका ले लिया था। रामचंद्र जी पागल बन के रो रहे थे, लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, सांत्वना भी नहीं दे पाते। उस समय राम गोदावरी नदी से पूछते हैं, हिरणों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, अरे तुम्हारी सहेली सीता जी कहाँ गई, मेरी प्रिया जी कहाँ गई, और रोते हैं तड़प तड़प कर। शंकर जी दूर से आए और उनकी लीला में बाधा ना पड़े, इसलिए उनको बहुत दूर से चारों तरफ से परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम किया परब्रह्म के रूप में राम को। सती जी वहां पर थी, उन्होंने कहा जी प्रभो आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, तो आप इस देव पर ब्रह्म राम को प्रणाम करना। उन्होंने पूछा यह व्यक्ति परब्रह्म कैसे, इसको पता नहीं जैसे कौन सी इसकी पत्नी को चुरा ले गया और उसे की स्त्री के लिए प्रलाप कर रहा है, रो रहा है, पागल हो रहा है, इसको इतना ज्ञान नहीं है तो यह परब्रह्म कैसे हो सकता है, इसको तनिक भी, और स्त्री के लिए इतना छटपट करके रो रहा है, इतना विषयी आसक्त है, इसको आप परब्रह्म कह रहे हैं। हाँ मैं परब्रह्म को ही, ये उनकी मधुर लीलाएं हैं। माना नहीं, कहा जी हाँ एक परब्रह्म तो वो राम है जो कि सब सबके खट में विराजते हैं, और उनकी लक्ष्मी को कौन चुरा करके ले जा सकता है, यदि चुराएगा भी तो क्या करेंगे, उसे साथ ही साथ में जान करके उसे उसकी हत्या करके उसको ले आ सकते हैं, तो इतना भी बल उनमें नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है, इतना ही सर्वंतर्यामी कैसे हुए। अच्छी बात है यदि हमारी बातों में विश्वास नहीं तो परीक्षा कर लो, ये कह करके आगे बढ़ गए। और ये सोचने लगी जी अब परीक्षा कैसे करें, अंत में सोच करके निर्णय लिया कि मैं यदि सीता का रूप बना लूं और इनके सामने खड़ी हो जाऊं तो दौड़ दौड़ करके आएंगे पकड़े।